एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने 20वीं सदी के साहित्य पर बहुत गहरा असर डाला है।
हाँ, एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है।
बिल्कुल, आधुनिक जीवन, अकेलापन, वो जो एक बेतुकापन सा लगता है कभी कभी, उस सब पर।
हम फ्रांस काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहे हैं, मतलब रूपांतरण।
काफ्का, ये नाम आते ही एक अजीब सी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है ना?
हाँ बिल्कुल, प्राग में जन्मे, लिखते जर्मन में थे, यहूदी परिवार से, कई संस्कृतियों के बीच उनकी जिंदगी गुजरी।
और कहते हैं उनके पिता का असर भी उनके लेखन पर काफी रहा। वो एक दबंग किस्म के व्यापारी थे।
हाँ, हर्मन काफ्का, और वो चीज, वो सत्ता का दबाव उनके किरदारों में दिखता है, वो दमनकारी पिता वाले चरित्र।
शायद यहीं से वो शहरी पनपी जिसे हम काफकेस्क कहते हैं।
हाँ, कह सकते हैं काफकाएस्क मतलब वो स्थितियां जो सपने जैसी अजीब हों, लॉजिक से परे
जहां आप किसी ब्यूरोक्रेसी में, किसी हालात में फंस जाते हैं,
और निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता।
काफका की खूबी ये थी कि वो ऐसी डरावनी चीजों को भी बिल्कुल सपाट, जैसे रोजमर्रा की बात हो, उस अंदाज में लिखते थे।
हाँ, जिससे वो और ज्यादा मतलब परेशान करने वाली लगती हैं। तथ्यात्मक गद्य और भयानक कल्पना का मेल।
और द मेटामॉर्फोसिस जो उन्होंने 1912 में लिखी थी और छपी 1915 में,
हाँ, पहले विश्व युद्ध के आसपास का वो उथल पुथल वाला दौर था।
वो शायद इस शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत ही ऐसी है कि पढ़ने वाला एकदम हिल जाता है।
ओ हाँ, वो पहली लाइन शायद दुनिया की सबसे मशहूर ओपनिंग लाइन्स में से एक।
क्या भी वो ठीक से,
जब ग्रेगर सामसा एक सुबह बेचैन सपनों से जागा, तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक विशालकाय घिनौने कीड़े में बदला हुआ पाया।
एक विशालकाय घिनौना कीड़ा, मॉन्स्ट्रस वर्मन।
और काफ्का ये नहीं बताते कि वो कौन सा कीड़ा है, बस वो है।
और देखिए, यहीं से कहानी का कमाल शुरू होता है। कहानी इस पर जोर ही नहीं देती कि ये हुआ क्यों।
कोई कारण नहीं बताया जाता, कोई जादू नहीं, कोई बीमारी नहीं।
बस ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई, अब इससे निपटना है।
हाँ, फोकस क्यों से हटकर अब क्या पर आ जाता है? परिवार स्थिति से कैसे निपटेगा?
तो कहानियां में कहां ले जाती है?
सामसा परिवार,
हाँ, उनके घुटन भरे से अपार्टमेंट में, शायद प्राग में।
हाँ, ग्रेगर सामसा जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है,
अकेला कमाने वाला,
बिल्कुल, बूढ़े पिता हैं जो अब काम नहीं करते, माँ है थोड़ी चिंतित सी, और एक छोटी बहन ग्रेटा 17 साल की।
जिससे ग्रेगर को बहुत लगाव था शायद।
हाँ, बहुत। वो परिवार का कर्जा चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, अपनी सारी इच्छाएं मारकर।
उसका सपना था शायद बहन को म्यूजिक स्कूल भेजने का।
हाँ बिल्कुल, ग्रेटा को वायलिन सीखने के लिए।
तो एक ऐसा बेटा, इतना कर्तव्यनिष्ठ, और एक सुबह वो ही नहीं रहता, मतलब बाहरी तौर पर।
यही वो सवाल उठता है, अगर हम पहचाने ही ना जाएं, तो हमारी इंसानियत का क्या, हमारे रिश्तों का क्या?
क्या हमारा वजूद सिर्फ हमारी उपयोगिता पर टिका है? क्या ये आधुनिक दुनिया हमें बस एक पुर्जा समझती है?
और ग्रेगर का पहला रिएक्शन इसी तरफ इशारा करता है
हाँ, वो अजीब था ना, वो कीड़ा बन गया है पर चिंता किस बात की है?
कि काम पर देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, बॉस क्या कहेगा?
सोचिए, ये कितनी भयानक बात है, जैसे नौकरी ने उसे पहले ही अंदर से बदल दिया था।
हाँ, उसका इंसान होना जैसे उसके सेल्समैन होने के पीछे छिप गया था।
फिर बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।
हाँ, पहले माँ, फिर पिता, फिर ग्रेटा। वो बेचारा जवाब देना चाहता है,
पर दे नहीं पाता, आवाज बदल गई है।
हाँ, एक अजीब सी जानवर जैसी भिनभिनाहट, और वो हिलने की कोशिश करता है अपने उस नए शरीर के साथ।
बहुत मुश्किल से,
और तभी ऑफिस में उसका चीफ क्लर्क भी आ जाता है।
जैसे काम का दबाव दरवाजे तक पहुंच गया हो।
वो बंद दरवाजा जैसे उसके अकेलेपन का प्रतीक हो।
परिवार से भी कटावा, दुनिया से भी।
आखिरकार वो दरवाजा खोल देता है, और फिर जो होता है,
हाँ, क्या होता है?
उसे देखते ही माँ चीखकर बेहोश, चीफ क्लर्क बिना कुछ कहे डर के मारे भाग खड़ा होता है।
और पिता?
पिता गुस्से से भर जाते हैं, हाथ में छड़ी और अखबान लेकर फुफकारते हुए
ओह,
उसे बेरहमी से वापस कमरे में धकेल देते हैं।
कोई समझने की कोशिश नहीं, बस डर, नफरत और
अस्वीकृति।
हाँ, जो बेटा कल तक सहारा था, आज वो एक एक अछू जैसा हो गया।
यहीं से उसके कैदी बनने की कहानी शुरू होती है।
कहानी फिर कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है। परिवार इस अजीब सी सच्चाई के साथ जीने की कोशिश कर रहा है।
शुरुआत में शायद बहन कुछ करती है,
या
ग्रेटा।
हाँ, ग्रेटा ही जिम्मेदारी लेती है। वो उसके कमरे में खाना रखती है और उसे पता चलता है कि ग्रेगर को अब सादा खाना नहीं, सड़ा गला खाना पसंद है।
ओह, वो कमरा साफ करती है पर धीरे धीरे ये काम उसे बोझ लगने लगता है।
और ग्रेगर वो क्या कर रहा है?
वो अपने नए शरीर के साथ थोड़ा तालमेल बिठाता है, दीवारों पर, छत पर रेंगता है, उसे इसमें एक अजीब सा सुकून मिलता है।
लेकिन वो ग्रेटा के आने पर छिप जाता है।
हाँ, शायद शर्म के मारे, या शायद उसे अपने इस रूप से डराना नहीं चाहता।
दूनी बढ़ रही है।
और परिवार की माली हालत बिगड़ती है तो पिता, माँ, ग्रेटा सबको काम करना पड़ता है।
अच्छा,
फिर एक दिन ग्रेटा और माँ सोचती हैं कि ग्रेगर को रेंगने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो कमरे से फर्नीचर हटा देते हैं।
लेकिन ग्रेगर को ये मंजूर नहीं।
नहीं, उसके लिए वो फर्नीचर सिर्फ सामान नहीं, वो उसकी पुरानी जिंदगी का, उसके इंसान होने का आखिरी निशान है।
उसे लगता है कि अगर ये भी चला गया तो वो पूरी तरह
मिट जाएगा। हाँ, और वो दीवार पर टंगी एक तस्वीर से चिपक जाता है जिसमें फर पहने एक महिला है।
शायद उसकी कोई पुरानी याद, कोई इच्छा।
उसे इस हालत में देखकर माँ फिर बेहोश हो जाती हैं।
और जब पिता घर आते हैं
तो वो सारा गुस्सा ग्रेगर पर निकालते हैं।
क्या करते हैं वो?
वो पास में रखे सेब उठाकर उस पर फेंकना शुरू कर देते हैं।
सेब?
हाँ, और एक सेब उसकी पीठ में बुरी तरह धंस जाता है। वो घाव फिर कभी भरता नहीं, सड़ने लगता है।
ये तो बहुत भयानक है। अब वो सिर्फ उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं।
नहीं, अब वो उसे चोट पहुंचा रहे हैं सक्रिय रूप से। पिता का वो रूप जैसे उनकी खोई हुई सत्ता वापस आ गई हो बेटे की कमजोरी पर।
और वो सेब जैसे बाइबल की कहानी का उल्टा हो गया, ज्ञान की जगह दर्द और मौत।
हाँ बिल्कुल, अब ग्रेगर सिर्फ बोझ नहीं, एक खतरा है जिसे खत्म करना जरूरी है।
इस हमले के बाद तो ग्रेगर की हालत और बिगड़ी होगी।
बहुत तेजी से कई महीने बीत जाते हैं, घाव सड़ रहा है, वो कुछ खाता पीता नहीं।
और उसका कमरा?
वो एक गंदे स्टोर रूम जैसा बन गया है, घर का फालतू सामान वहीं फेंका जाता है।
और परिवार, वो क्या कर रहा है?
परिवार अपनी नई जिंदगी में ढल गया है, घर में 3 किराएदार रख लिए हैं पैसे के लिए।
ओह, तो बाहरी दुनिया घर के अंदर आ गई है।
हाँ, और ग्रेटा वो अब बच्ची नहीं रही, काम करती है, एक आत्मविश्वासी युवती बन गई है।
ये कैसा विरोधाभास है? ग्रेगर खत्म हो रहा है और परिवार पनप रहा है।
जैसे उनकी आजादी ग्रेगर की कैद पर टिकी हो।
फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
हाँ, एक शाम ग्रेटा किराएदारों के मनोरंजन के लिए वायलिन बजा रही होती है।
और ग्रेगर संगीत सुनता है।
हाँ, शायद वो इंसानियत की आखिरी पुकार थी। उसे अपना वो सपना याद आता है ग्रेटा को संगीत सिखाने का।
और वो बाहर आ जाता है।
हाँ, संगीत उसे खींच लाता है, वो दरवाजे तक आ जाता है, शायद ये भूल कर कि वो क्या बन चुका है।
लेकिन किराएदार उसे देख लेते हैं।
हाँ, और उनके चेहरे पर नफरत और डर साफ दिखता है। वो कहते हैं कि वो ऐसी जगह एक पल नहीं रुकेंगे और बिना किराए दिए चले जाएंगे।
सब गड़बड़ हो जाता है।
और इस घटना के बाद ग्रेटा का सब्र टूट जाता है।
वो क्या कहती है?
वो अपने माता पिता से कहती है साफ साफ, हमें इससे छुटकारा पाना होगा।
इससे?
हाँ, वो कहती है ये चीज ग्रेगर नहीं हो सकती, अगर ये ग्रेगर होता तो वो खुद चला गया होता। वो समझ जाता कि इंसान ऐसे जानवर के साथ नहीं रह सकते।
ओह, ये तो उसने उसे चीज और जानवर कह दिया।
हाँ, उसने तर्क का सहारा लेकर ग्रेगर की पहचान ही छीन ली। ये उसकी शारीरिक मौत से पहले उसकी भावनात्मक मौत थी।
और ग्रेगर ये सब सुन रहा था।
हाँ, और वो अजीब सी शांति महसूस करता है, जैसे प्यार का आखिरी धागा भी टूट गया। वो उनके फैसले को मान लेता है
और फिर
चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है और उसी रात सुबह होने से ठीक पहले मर जाता है।
अकेला, गुमनाम।
अगली सुबह सफाई वाली आती है, उसके सूखे चपटे शरीर को देखती है, कहती है देखो जरा, ये तो पूरी तरह निपट गया, और झाड़ू से उसे हटा देती है।
और परिवार, उनका क्या रिएक्शन था? दुख?
नहीं, राहत, एक गहरी सांस। पिता कहते हैं चलो, भगवान का शुक्र है।
राहत?
हाँ, वो उस दिन छुट्टी लेते हैं, शहर से बाहर घूमने जाने का फैसला करते हैं।
ये अंत इतना ठंडा क्यों लगता है?
वो ट्राम में बैठकर जाते हैं, भविष्य की बातें करते हैं कि अब पैसे की तंगी कम होगी, और फिर वो ग्रेटा को देखते हैं।
हाँ,
कि वो कितनी जवान और सुंदर हो गई है, और सोचते हैं कि अब उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का वक्त आ गया है।
तो ग्रेगर का बलिदान परिवार की आजादी बन गया।
हाँ, उनका अपना रूपांतरण ग्रेगर के अमानवीयकरण की कीमत पर हुआ। यही कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद विडंबना है।
अगर हम किरदारों को देखें तो ग्रेगर एक जिम्मेदार बेटा, फिर अलग थलग, फिर नफरत का पात्र।
उसका बाहरी बदलाव जैसे उसके काम के बोझ तले दबे होने का ही एक रूप था।
और ग्रेटा सहानुभूति से शुरू करके बोझ महसूस करती है और आखिर में
नकार देती है।
हाँ, जैसे करुणा की भी एक सीमा होती है, या शायद आत्मरक्षा जीत जाती है। पिता का बदलना भी गौर करने वाला है। हारे हुए आदमी से दोबारा घर का मुखिया, वो सत्ता जो बेटे की कीमत पर मिली।
हाँ, उनकी वर्दी उसी का प्रतीक है।
और माँ, वो बेचारी बस देखती रहती है, प्यार और डर के बीच फंसी हुई, शक्तिहीन।
ये कहानी कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है, अकेलापन, अलगाव।
ग्रेगर कीड़े बनने से पहले भी तो अकेला ही था अपने काम में।
हाँ, और परिवार के बाकी लोग भी, सब अपनी अपनी दुनिया में।
और काम का आमानवीकरण, कैसे हमारा मूल्य सिर्फ हमारी कमाई से जुड़ जाता है।
ग्रेगर की पहली चिंता नौकरी की थी, ये बात बार बार याद आती है।
पारिवारिक रिश्ते, क्या वो सिर्फ जरूरत पर टिके होते हैं?
जब तक ग्रेगर कमा रहा था, उपयोगी था, सब ठीक था, जैसे ही वो बोझ बना,
रिश्ते बदल गए, ये सवाल परेशान करता है।
और पहचान का सवाल, हम कौन हैं? क्या ये शरीर ही हम है या हमारी भावनाएं? समाज हमें कैसे देखता है, क्या वही हम बन जाते हैं?
काफ का जवाब नहीं देते हैं, बस बेचैन करते हैं।
हाँ, वो हमें ग्रेगर के नजरिए से कहानी दिखाते हैं ज्यादातर, तो हम उसका दर्द महसूस करते हैं, पर बाहर से ये भी देखते हैं कि क्या हो रहा है।
और वो भाषा, सपाट, तथ्यात्मक, भयानक चीजों का भी।
हाँ, वो ग्रोटेस्क अंदाज, भयानक भी और कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी, एक डार्क ह्यूमर।
आखिर में ये कहानी एक उदासी छोड़ जाती है ग्रेगर के लिए, और गुस्सा भी आता है परिवार पर।
और ये सवाल उठता है कि हम अपने आसपास उन लोगों से कैसे पेश आते हैं जो अलग हैं, बीमार हैं, बेकार हैं।
क्या हमारा प्यार भी शर्तों पर टिका है?
लगता है ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे जरूरतें, सामाजिक दबाव, वो प्यार और करुणा पर भी हावी हो सकते हैं।
और शायद ये याद दिलाती है कि किसी इंसान का मूल्य सिर्फ उसकी उपयोगिता नहीं है, सच्ची इंसानियत मुश्किल हालातों में सहानुभूति बनाए रखने में है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।